महाबंध पुस्तक पहिली लेक्चर नंबर 3। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहुवं, भूतबलि प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं, महाधवल विख्यातं महाबंधं नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का छठा खंड है। उसके जो पहली पुस्तक है उसके 11 नंबर के पृष्ठ पर हम आ गए हैं। ये पहली पुस्तक में प्रकृति बंध की चर्चा है, महाबंध में बंध की ही चर्चा है सब, तो उसमें प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध की चर्चा चलेगी। एक पुस्तक है पूरी प्रकृति बंध पर। यहाँ मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले जो सूत्र आया है वो है नमो जिनानम, यानी जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिन भगवान को नमस्कार करता हूँ। एक सूत्र में ही आगे के सारे सूत्र गर्भित है, क्योंकि जिन कहने से जिनेन्द्र भगवान तो हो ही गए, जो अरिहंत और सिद्ध उसमें आते हैं, परंतु आचार्य, उपाध्याय और साधु को भी एक देश जिन कहा है। जब हम नमो जिनानम कहते हैं तो उसमें पांचों परमेश्वर गर्भित हो जाते हैं। तो नमो जिनानम कहने से एक में तो सारे गर्भित हो गए, अब उसी को और खोल खोल कर बता रहे हैं, यानी उसमें भेद प्रभेद जितने हैं मुनियों की अपेक्षा वगैरह वो सब यहाँ लेंगे। तो उसके बाद हमने ओही जिनानम कहा था, यानी अवधि जिन, अवधि जिन कहने से उसमें कौन से देशावधि, परमावधि, सर्वावधि और अनंत अवधि। अनंत अवधि यानी जिसको कोई मर्यादा ही नहीं है, ये केवल ज्ञानी को अनंत अवधि ज्ञानी कहा था। उसके बाद अब ये जो बुद्धि रिद्धि के जो भेद है ना, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी, संभिन्न श्रोत वगैरह वगैरह भी अभी चलेगी बात। तो हमने 11 नंबर के पृष्ठ पर पहले कोष्ठ बुद्धि की बात की थी, ऊपर नमो कोष्ठ बुद्धिनम। फिर 7 नंबर के सूत्र में नमो बीज बुद्धिनम, यानी कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी बुद्धि, ऐसे उसके भेद है वृद्धि रिद्धि के। तो 8 नंबर के सूत्र में हमने पढ़ा था नमो पदानुसारिणम, पदानुसारी के भी उन्होंने 3 भेद बताए थे, यानी वो बीज पद के द्वारा ऊपर के ग्रंथ को जान लेता है, एक है वो अधस्तन ग्रंथ को जानते हैं उसको प्रतिसारिणी बुद्धि कहा, और उपरिम को जानता है उसको अनुसारिणी कहा है, और ऊपर नीचे दोनों ओर को जान लेते हैं उसको उभय सारिणी कहा था। यहाँ तक तो हमारी बात हुई थी। ये तो बुद्धि बुद्धि रुद्धि, यानी रिद्धि धारक मुनियों को जो बुद्धि रिद्धि होती है, तो उसकी बात है यहाँ पर। ये उनके शुद्ध ज्ञान में इतनी बातें ये होती है कि जो कुछ पढ़ा है वो अलग अलग, जैसे हमने जिसका जो जूस कंपार्टमेंट जैसे स्टोर करते हैं वैसे, वो तो कुष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि ने एक एक शब्द से पूरा ग्रंथ उनको पता चल जाता है। अब यहाँ 9 नंबर का सूत्र 11 नंबर के पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, नमो संभिन्न सोदाराणम, अर्थ संभिन्न श्रोतृत्व नामक रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। ये सब मुनियों की अपेक्षा ही ये सब बातें होती है, केवल ज्ञानी के तो सब कुछ जान ही जाते हैं, अनादि अनंत सब कुछ, उसमें तो कोई लिमिटेशन तो है ही नहीं है। तो यहाँ संभिन्न श्रोतृत्व किसको कहेंगे वो हम आगे बढ़ते विशेषार्थ। 12 नंबर का पेज है, 9 योजन लंबी, 12 योजन चौड़ी, चक्रवर्ती की सेना के हाथी, घोड़ा, ऊंट तथा मनुष्यादिकों के एक साथ में उत्पन्न। अभी इतनी बड़ी सेना है तो हर एक की आवाज होते होगे कि नहीं होगी, और वो सारे के जो कोई अलग अलग अक्षरात्मक अनक्षरात्मक, अनक्षरात्मक कहने से उनके जो कुछ जैसे पशुओं के जो कुछ है तो केवल ध्वनि निकलती है ना, अलग अलग संकेत रूप उसको भी जान लेते हैं। तो अक्षरात्मक अनक्षरात्मक अनेक प्रकार के शब्दों को, अभी उसमें वाद्य भी बजते होंगे ना, कौन से वो जैसे रण में फूके जाते हैं वो भी है, मनुष्य इनके वहाँ उनके ऑर्डर भी देते होंगे और क्या क्या ऐसे, और वो लोग भी कोई ऐसे जोर जोर से बोलकर हल्ला करते हैं ना, तो कहते कि अनेक प्रकार के शब्दों को कुछ बाहर सुनने लायक कुछ नहीं है। तपोबल विशेष के कारण, देखो ये सहज रूप से ज्ञान का विकास है वो, और वो अपने से होता है, बाहर से सुन सुनकर कुछ नहीं हो रहा है, परंतु ये ऐसे ऐसे बुद्धि प्रकट हो जाती है। तो कहते तपोबल विशेष के कारण, यानी मुनियों के विशिष्ट उनके जो तप के प्रभाव के कारण, सर्व जीव प्रदेशों में, देखो क्या कहते हैं, ये बहुत महत्व की लाइन है, कर्ण इंद्रिय का परिणमन होने से। अभी कर्ण इंद्रियों का जो है, हमने देखा ना इंद्रिय पर्याप्ति में क्या होता है, जहां ये कर्ण इंद्रिय की रचना हुई अंतरंग में, जो बिल्कुल ऐसे छोटी हड्डी जैसे वगैरह होते, वहां के आत्म प्रदेशों के द्वारा ध्वनि का ग्रहण होता है, ग्रहण वहां से होता है। बाकी हम कहेंगे पर्याय पूरे आत्मा में हो रहे, पर ग्रहण वहां से होता है उन प्रदेशों से। यहां क्या कहा, सर्व जीव प्रदेशों में, जीव के जितने असंख्यात प्रदेश है संपूर्ण में कर्ण इंद्रिय का परिणमन होने से, यानी संपूर्ण जीव प्रदेशों से वो शब्दों को ग्रहण करते हैं।
तो हम लोग का भी अलग है, उन लोग का पूरे,
यानी वो तप के कारण वो हो जाता है, उनकी इतनी विशेषता हो जाती है कि सर्वांग यानी संपूर्ण आत्म प्रदेशों के द्वारा ध्वनि को ग्रहण करते हैं। हाँ, आपका प्रश्न है, यहाँ से सुनेंगे तो ज्ञान होता है, परंतु उसको आदि जहाँ से ग्रहण होता है, जैसे चक्षु इंद्रिय में वर्ण का ग्रहण यहाँ से होता है, ज्ञान पूर्ण पूरी आत्म प्रदेशों में वो पर्याय होती है, परंतु उपयोग रूप ग्रहण कहाँ से हो रहा है उसकी बात है। सर्वांग से, सर्वात्म प्रदेशों से सुनने का कार्य हो रहा है। प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी भी ये तो मुनिराज है ना, चक्रवर्ती ने मुनिराज को होगा तपोबल के विशेष से, चक्रवर्ती को नहीं, चक्रवर्ती की सेना की बात की, यानी इतने लंबे चौड़े सेना में कितने लोग हो गए, कितने हाथी घोड़े क्या क्या हो गए, कितने वाद्य बजाए जा रहे हो गए, तो ये सभी ध्वनि को हर एक को जुदा जुदा जान लेते हैं, सबका मिलकर के औस तो हम भी सुनते हैं ना, कोई हल्ला गुल्ला हो रहा है, कोई भीड़ आ रही है, तो जोर से कोई तो ध्वनि एक साथ कुछ उसका कॉम्बिनेशन रूप सुनते हैं, इनके तो प्रत्येक को जुदा जुदा जान लेते, और वो अक्षरात्मक अलग अनक्षरात्मक अलग। सर्व जीव प्रदेशों से में कर्ण इंद्रिय का परिणमन होने से सर्व शब्दों का एक काल में ग्रहण करना, यानी एक ही काल में युगपत सभी शब्दों का ग्रहण करना यानी जानना, संभिन्न श्रोतृत्व रुद्धि है, यानी ज्ञान का क्षोभ है, ये रिद्धि है, इसको जो हम कहते हैं बुद्धि रिद्धि के ये भेद है। जैसे अभी हमने कौन कौन से देखे थे, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी बुद्धि, और ये संभिन्न श्रोतृत्व, ये तो सारे बुद्धि रिद्धि के भेद है। तिलोय पन्नति में कहा है, श्रोत्रेन्द्रियावरण श्रुत ज्ञानावरण तथा वीर्यांतराय का उत्कृष्ट क्षोभ तथा अंगोपांग नाम कर्म के उदय होने पर श्रोत्रेन्द्रिय के उत्कृष्ट क्षेत्र से बाहर दसों दिशाओं में, ये ऑर्डिनरी श्रोत्रेन्द्रिय का विषय हमने देखा था, एक इंद्रिय सॉरी पंचेन्द्रिय का कितना होता है, उसके टेबल देखे थे, इंद्रिय का विषय मैक्सिमम कितना होता है वगैरह वगैरह, जैसे चक्षु इंद्रिय के लिए वो चक्रवर्ती वहाँ सूर्य विमान को देखते उसकी बात आई थी। ऐसे हर एक इंद्रिय का जो विषय है, तो कहते उससे भी बाहर दसों दिशाओं में संख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र में स्थित मनुष्य एवं तिरियंचों के अक्षरात्मक अनक्षरात्मक बहुत प्रकार के उत्पन्न होने वाले शब्दों को सुनकर, यहाँ तो चक्रवर्ती की सेना फॉर एग्जाम्पल बताए, परंतु उसमें कोई सेना होनी चाहिए ऐसी बात है क्या? उतने क्षेत्र में जो कुछ शब्द उत्पन्न हो रहे हैं उन सबको एक साथ जानने, जिससे उत्तर दिया जाता है शब्दों को सुनकर जिससे उत्तर दिया जाता है वह संभिन्न श्रोतृत्व है, यानी उसका अंगोपांग नाम, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय का जो है ना उसमें अंगोपांग नाम कर्म का भी उदय है, क्योंकि ये जैसे श्रोत्रेंद्रिय किसको होगा, पंचेंद्रिय की होगा, तो उसकी भी रचना जो हुई है इंद्रियों की, उसमें भी अंगोपांग नाम कर्म का उदय तो होता ही होता है। अब आगे बढ़ते क्षेत्र की, हाँ कितने क्षेत्र तक जानता है, नौ योजन बारह योजन एक, हाँ महायोजन ही लेना ना, हाँ क्योंकि एक योजन में चार कोष और वो ऑर्डिनरी नहीं महायोजन जो 500 गुना होगा, यानी चार कोष के बदले चार गुना 500 2000 कोष यानी 4000 माइल एक का, ऐसे नौ और नौ बाय बारह। दसवें नंबर का सूत्र पेज नंबर 12, नमो उजुमदीनम अर्थ रुजुमती मन पर्य ज्ञानी जिनों को नमस्कार हो। ये सर्वत्र ये एक देश जिन ही लेना है, क्योंकि मुनियों की अपेक्षा इतने भेद पड़ते हैं ना। अर्थ ये देखा हमने, रुजुमती मन पर्य ज्ञानी जिनों को नमस्कार हो। देखो रुजुमती और विपुलमती दो भेद है मन पर्य ज्ञान के। रुजुमती का अर्थ क्या है, जो सरल मन वाले जीवों के मन की बात जान लेते हैं, और विपुल मती है नहीं, वो ज्यादा पावरफुल है जिसको कहेंगे कि टेढ़े मन कहते हैं ना, टेढ़े मन सोचने वाले, क्या कहते हैं आप, क्या हाटी गुटी आठी गुटी वाला ये कह रहे हैं गुजराती मधे, हम कहते हैं ना टेढ़ा मन, यानी जो सीधा नहीं सोचता है, मायाचारी कोई कपट रूप इस तरह से आठी गाठी आठी गुटी गुजराती में इन्हें वो तो सीधे मन के तो जानेंगे ही जानेंगे, और ऐसे टेढ़े मन वालों की भी बात जानेंगे। उसमें तो बहुत है ना, मन से वचन से काया से जो कुछ किया था वो पूर्व में और अभी भूल गया है, और उसके अभी विचार आए कि मैंने क्या किया था, मैंने क्या बोला था, इस तरह से उस सबको ये जान लेते हैं। अब जितने वो तो उसके भी भेद है, उसमें जो उत्कृष्ट वाला जो होता है वो आगे कितने भव तक पीछे कितने भव तक कितने क्षेत्र तक उसकी बात आती है। मैक्सिमम क्षेत्र कितना है याद है, मन परे ज्ञान का मैक्सिमम क्षेत्र कितना है, मनुष्य लोक, और वो चौकोर बताया है, गोल नहीं, यानी कोई कोनों में भी जो कोई स्थित है उसकी भी मन की बात जानेंगे। कोनों में मनुष्य तो नहीं हो गए, तीरंज तो हो गए, देव हो गए वहां पे। आप कुछ पूछ रहे थे,
मनुष्य बात बोलने को उसका साइज 45
45 लाख योजन तक
वही बताना था,
वो स्क्वायर रूप लेना है मनुष्य लोक में स्क्वायर रूप।
अभी आपने
नहीं, वो गोलाकार वो नहीं, वो वृत्ताकार का निषेध किया है, फिर भी वो कथन आता है कहीं कहीं वृत्ताकार वाली बात। दो मत ऐसे आते हैं कि एक्चुअली मनुष्य लोग चतुष्कोण सहित, और जहां बैठे वहां से 45 लाख, ऐसा भी कोई कोई कैलकुलेट करते हैं। हाँ
नहीं, ये जो अभी आपने विपुलमती की बात बताई थी,
हाँ
तो विपुलमती में ये बात भी निश्चित होती है कि जो बोलता कुछ है और मन में उसके कुछ अलग से भाव होते हैं उसको टेढ़ा मन कहेंगे ना, यानी समझ लो कोई बॉस है, कोई क्लर्क को गुस्सा कर रहा है, यस सर और एकदम ऊंचे हंसता हुआ रख रहा है, लेकिन अंदर से तो ऐसा लगता है कि अभी इसको कैसा मैं जवाब, यदि
ऐसे ना, पर मन में तो वो देखो देखो टेढ़े मन यानी तो
मन वचन काया में डिफरेंस होना
डिफरेंस हो जाएगा। अभी हम पढ़ते हैं 11 नंबर का सूत्र, नमो व्यूल मदिनम विपुलमति मनपरिय ज्ञानी जिनों को नमस्कार हो। 12 नंबर, नमो दशपूर्वीणम दशपूर्वधारी जिनों को नमस्कार हो। जैसे 12वें अंग में 14 पूर्व है तो उसमें पूर्वधारी जो होते हैं 10 पूर्वधारी और 14 पूर्वधारी ऐसे कहते हैं। एक एक पूर्व से एक पूर्वधारी दो पूर्वधारी ऐसा नहीं आता है, 10 पूर्वधारी 14 पूर्वधारी, क्योंकि यही ये जो श्रेणी चढ़ सकते हैं ऐसा आता है। तो ये दश पूर्व उसकी क्या विशेषता है, उसमें दो होते हैं भिन्न दश पूर्वी और अभिन्न दश पूर्वी, सुना है कभी? हाँ क्या होता है वो मालूम नहीं, सुना है? भिन्न दश पूर्वी यानी दश पूर्वी तक का ज्ञान है, कोई उपशम श्रेणी चढ़ के भी उतरे है परंतु भावलिंगी तो है ना, तभी तो इसका होगा। मिथ्या दृष्टि को तो नौ पूर्व के आगे जाता नहीं हो, तो बाद में उसमें वो सारी मैली विद्या वगैरह उसका विस्तार से वर्णन आता है, परंतु तो कोई भ्रष्ट हो जाते नौ पूर्व तक का, दसवें में नहीं, दसवां नहीं हो सकता उसका तो वही श्रेणी चढ़ के जाते हैं। हाँ तो बाद में वो विद्याओं करने लग जाते हैं, कुछ ऐसे भ्रष्ट हो जाते हैं, मिथ्यात्व में चले जाते हैं, उसको भिन्न रुद्र भी होते हैं, उसमें रुद्र भी ऐसे होते हैं, अन्य भी होते हैं जो रुद्र नहीं वो भी, तो उसको कहेंगे वो दश भिन्न दश पूर्वी। अभिन्न ने वो तो पढ़ता है उसका भावलिंग बना रहता है, वो अभिन्न दश पूर्वी। देखो दश पूर्वधारी जिन्हों को, उसमें बोलो
तभी उसको दस पूर्व का ध्यान होता है।
हाँ
दस तो वो ज्ञानी है,
यानी भावलिंगी मुनियों को ही दस पूर्वी का ज्ञान हो सकता है,
और पीछे वो
बाद में भ्रष्ट हो सकता है ना, मुनि बना चला जाता है, असंयमी हो जाते हैं, क्यों इतने विचार क्यों करने लगे।
ये दस पूर्वी में मैली विद्याओं की विशेष बातें हैं, तो वो जीव उसमें अटक जाता है,
वो करने लग जाता है, उसकी कुछ महत्ता आ जाती है, कुछ अभिमान हो जाए, जो कुछ हो जाता है। अभी परिणाम कैसे कैसे अलग अलग है, हमने तो ये भी देखा ना, चार चार बार उपशम श्रेणी चढ़ने वाले भी जीव अभी एकेंद्रीय में निगोदादि में पड़े हैं। ये तो जब हम शपित कर्मोंशिक की बात देखी ना, कितने बार असंख्यात बार सम्यक तो प्राप्त किया, असंख्यात बार पांचवे वाले हो गए, कितने बार संयम धारण किया है। ये नहीं घबराने की बात नहीं, क्या हो सकता है उसकी यहाँ बात है। अरे भिन्न ने वो मिथ्या तो में जाता है, भिन्न दशा पूर्वी तो छूट जाता है उसका, वो मिथ्या तो में चले जाते हैं। श्रुत केवली परंतु वो श्रुत केवली मोक्ष में जाएगी ऐसा नहीं है ना। हाँ वो जैसे वो दस पूर्वी की बात है भिन्न अभिन्न वैसा नहीं होता उनका, गिरते नहीं मिथ्या तो में ऐसे नहीं जाएंगे, फिर देव में चले जाएंगे। चौदह पूर्वधारी की बात है श्रुत केवली, देखो दस पूर्वधारी जिनों को नमस्कार हो। विशेषार्थ, महारोहिणी आदि विद्याओं के द्वारा अपने रूप सामर्थ्य आदि का प्रदर्शन करने पर भी अडिग चारित्रधारी का जो दशम पूर्व रूप दुस्तर सागर के पार पहुंचना है वह दशपूर्वित्व है। यहां जिन शब्द की अनुवृत्ति होने से अभिन्न दशपूर्वित्व का ग्रहण किया, देखो है ना लिखा है ना उन्होंने, ये भिन्न वालों को नहीं यहां नमस्कार किया, अभिन्न क्योंकि जिन शब्द लगाया है, एक देश जिन बताया उन्होंने। तिलोय पन्नति में कहा है दशम पूर्व के पढ़ने में रोहिणी आदि 500 महाविद्याओं तथा अंगुष्ठ प्रसेनादि 700 क्षुद्र विद्याओं के द्वारा आज्ञा मांगने पर भी जो महर्षि जितेंद्रिय होने के कारण उन विद्याओं की इच्छा नहीं करते, आज्ञा मानने पर इन्हें विद्या उसके जो देवियां हाथ जोड़कर खड़ा होती है सामने हाँ, और वो अगर वो आज्ञा देते हैं तो वो वैसा कर देते हैं। ये सारी विद्याएं जो उनकी प्राप्त होती है तो उस विद्या को यानी संपन्न करने वाली देवियां देव वगैरह जो होते हैं, तो कि ये तो वो हाथ जोड़ के सामने खड़े हैं, अगर वो आज्ञा दे तो वो कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करते वो।
तो हम लोग देख रहे हो सच्ची बात है ना, जो सब देवियां
करती है।
देखो देवियां प्रकट यानी तो होती है, ऐसा अलग अलग है वो विद्या से, यानी जो तप के बोल से भी ऐसे कुछ कितने विद्याएं हैं, उसको जो जिसको कहें ना उसको संपन्न करने वाली अलग अलग देवियां भी होती हैं। जैसे आपने ये भूत बलि और पुष्पदंत की हमने देखी थी कि वो मंत्र गलत था तो वो देवी भी कुरूप रूप से उत्पन्न हुई, सही मंत्र पढ़ने पर वो तो सौंदर्यवान वो देवी प्रकट हुए। ऐसे वो तो पूर्व में मंत्र के ऐसे कुछ विशेष प्रभाव थे। पूर्व में तो ये तो हमने देखा ना जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, देखो जिनेन्द्र के ज्ञान में क्या नहीं आया है, तो ऐसी जो विद्याएं जो करके कुछ जो कर रहे हैं वो भी उनके ज्ञान का ये है कि नहीं है, परंतु ये उन्होंने जान लिया इसके लिए उसको फॉलो करना थोड़ी है।
तो ये देवियां प्रकट होती है वो देव लक्ष्य से आती है,
हाँ व्यंतर वगैरह होती है
वो सब भी कुछ थी।
जरूरी नहीं,
नहीं?
क्यों
हमारे यहाँ पहले जब हम सिद्धांत प्रवेशिका सीखते थे तो एक लेडी आती थी हमारे यहाँ, तो ये सर्वज्ञ भगवान क्या क्या बताते ये सब बातें चली थी, तो सब जानते उसमें क्या है सब। तो एक दिन आके हमारे से झगड़ा करने लगी, आपने जिनेन्द्र भगवान संगीत के बारे में जानते नहीं है, जानते हैं ऐसा कहा।
यानी संगीत विद्या भी यही अपने उसमें आती है,
हाँ।
उसकी बात तो, क्यों नहीं बताया आपने?
तो आप तो खाली आत्मा की बात करते, संगीत की बात ही नहीं करते, उस दिन से आना ही बंद हो गई।
ये सारे संगीत है, नाटक है, जैसे वैद्य शास्त्र है, वैद्य शास्त्र है, वो सब का है, सब है, जितना साइंस है सब कुछ उसमें है, परंतु वो फॉलो करके वो उसके पीछे लगना चाहिए कहाँ, उसकी बात कहाँ है। हाँ, क्योंकि उनको तो बाहर की महिमा पड़ी है ना अभी, हाँ। वल्लभ विद्यालय है ना यहाँ का संगीत का। वैसे जो भरत शास्त्र नाम का कुछ नृत्य शास्त्र भी है, उसके भी इसी में से उत्पत्ति हो गई है, बहुत सारे हैं। कोई कहते ना वास्तुशास्त्र, अरे इसमें है सब, परंतु उससे करने से मैं सुखी हो जाऊंगा और ये ऐसा करना चाहिए कहाँ लिखा है, वो शास्त्र है एक कोई जो कुछ, तो ये उसके पीछे लगता है तो अपना नुकसान कर लेता है, क्योंकि सारा सुख यहाँ है, वो बाहर की कुछ हेरा फेरी करके क्या चाहता है, उसमें से कुछ संयोग पलटना चाहता है और उससे फिर मैं सुखी होऊंगा ये मान्यता है तो उसकी पुष्टि होती है उसमें। यानी जो करने लायक है वो तो करता नहीं, और नहीं वो उसके पीछे लग जाता है। जो करने लायक उसमें तो कोई एक पैसे की जरूरत नहीं है, और ये वास्तु शास्त्र के पीछे लाखों रुपए खर्चा करने को तैयार है। देखो आगे बढ़ते हम, यहाँ पर ये तिलोय पन्नति में कहा है, लिखा है ना 12 पेज पर नीचे 12 सूत्र के विशेषार्थ में सेकंड पैराग्राफ, दशम पूर्व के पढ़ने में रोहिणी आदि 500 महाविद्याओं तथा अंगुष्ठ प्रसेनादि 700 क्षुद्र विद्याओं के द्वारा आज्ञा मांगने पर भी, विद्याओं के द्वारा आज्ञा नहीं, वो तो देवियां प्रकट होती हैं, जो महर्षि जितेंद्रिय होने के कारण उन विद्याओं की इच्छा नहीं करते हैं, वे विद्याधर श्रमण या अभिन्न दशपूर्वी कहलाते हैं। फुटनोट में 4 नंबर लिखा है, इथ दशपूर्विणो भिन्न अभिन्न भेन दुविया होती, यानी ये जो दशपूर्वी जो है वो भिन्न दशपूर्वी और अभिन्न दशपूर्वी नाम के भेद से दो प्रकार के होते हैं। भिन्न दशपूर्विणम कथम पड़िनियति, तो भिन्न दशपूर्वी किस तरह से वो होते हैं, जिन सद्दाणुवत्ति दो, नचतेसिम जिनत्तम मत्थी, क्या कहते हैं, जिन शब्द की अनुवृत्ति है, इसलिए भिन्न दशा पूर्वी को यहाँ नमो दशा पूर्वीणम में नहीं लिया है, क्योंकि दशा पूर्वी जिनानम ऐसा शब्द है, क्योंकि जिनानम शब्द की अनुवृत्ति ने कंटिन्यूटी हर सूत्र में चलती है। सूत्र की विशेषता होती है कि जरूरी से एक एक अक्षर भी एक्स्ट्रा नहीं लिखते हैं, ये सूत्र की विशेषता है, जिसे तत्पर सूत्र में भी हमने देखा है, वो हर सूत्र में वो है ऐसा समझ लेना, उसको कहेंगे अनुवृत्ति। तो यहाँ नमो दस पूर्वीण मैंने दस पूर्वी जिनानम ऐसा कहा है, इसलिए यहाँ अभिन्न दस पूर्वी की ही बात होती है। ये जिन शब्द अनुवत्ति दो, यानी जिन शब्द की अनुवृत्ति होने से, नचतेसिम जिनत्तम अथी, यानी जो भिन्न दस पूर्वी को यहाँ क्यों नहीं लिया, तो कहते उसमें जिनपना नहीं है, क्योंकि भिन्न कब कहेंगे, वो गिर गया अभी वहां से। भग्ग महुवयेषु जिनत्तानुवत्ति दो, यानी उनमें जो जिन शब्द की अनुवृत्ति केवल वो अभिन्न में लगेगी, भिन्न में नहीं लगेगी। अब आगे 13 नंबर का सूत्र, नमो चौदस पूर्वीणम, अर्थ 14 पूर्वधारी जिनों को नमस्कार हो, विशेषार्थ जो संपूर्ण श्रुत केवली पने को प्राप्त है, उसको श्रुत केवली कहते हैं, द्वादशांक का ज्ञान जिनको है, समस्त श्रुत का, तो श्रुत केवल ज्ञानी कहते हैं, यानी श्रुत केवली, वे चतुर्दश पूर्वी कहलाते हैं। अब नंबर 13 का पृष्ठ है, नमो अठंग महानिमित्त कुशलाणम, आपने सुना होगा निमित्त ज्ञानी होते हैं, और वो भी कैसे, अष्टांग महानिमित्त ज्ञानी, बताएंगे कौन कौन से होते हैं अष्टांग। देखो, अष्टांग महानिमित्त विद्या में प्रवीण जिनों को नमस्कार हो, ये मुनिराज है, ये भी ज्ञान की विशेषता है, वो तो निमित्त ज्ञान भी वो श्रुत ज्ञान का ही भेद है, जैसे कोई आकाश की ओर देखकर उनको ज्ञान हो जाता ना, अभी कुछ जैसे बारिश होने वाली है, या पृथ्वी की भूमि की ओर देखकर, या कोई सपनों को सुनकर उसके निमित्त उसके बताते हैं, ऐसे निमित्त ज्ञानी कहलाते हैं। विशेषार्थ अंतरिक्ष समझते हैं, आकाश की ओर, स्पेस जिसको कहेंगे, भौम, भौम यानी भूमि, अंग यानी किसी के तो मस्तक देखकर, उसके फेस देखकर, उसके अलग अलग अंगों को देखकर, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न और स्वप्न, अभी ये सबका अर्थ बताएंगे। ये 8 महानिमित्त कहे जाते हैं, यानी उनको देखकर या उनके निमित्त से इनके ज्ञान यहाँ हो जाता है। अभी अंतरिक्ष ज्ञान किसको कहना, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ताराओं के उदय अस्त आदि से भूत भविष्यत संबंधी फल का ज्ञान करना अंतरिक्ष ज्ञान है। ये भी ज्ञान के भेद है, यानी ऐसे ऐसे उसके निमित्त से ये आगाही करना या क्या बीत गया उसको बताना, ये एक साइंस है। हाँ, अरविंद भाई कहते हैं चांद को, वो मराठी कहते हैं, मराठी में उसको खड़ पड़ने, हाँ, यानी चंद्र को खल पड़ता है ना, क्या कभी देखा है, देखो देखो जैसे इंद्रधनुष देखा है, हाँ, ऐसे चांद के पूरे राउंड में पूरा रिंग दिखती है, बहुत बड़ी बड़ी, और वो हमने छिंदवाड़ा में भी आपको बताया था, इसको खड़ कहते, खड़, और मुझे बचपन की याद है जब हम कहीं पिकनिक खाए, वो जो जैसे वो आपके होते हैं ना, गाँव वो बहुत पूनम की रात थी, और इतना बड़ा कि जैसे नीचे देखते हुए ऐसा लगता था कि किसी 60 फुट वाली बड़ी डायमीटर वाली, इससे भी ज्यादा था, यानी बीच में ये चंद्रमा है, और वो पूरा ऐसा, वो जैसे इंद्रधनुष के 7 कलर होते हैं ना, ऐसा पूरा वो उसका राउंड आता है, और कभी कभी तो डबल राउंड भी दिखता है उल्टे क्रम से। वो तो वैसे पुद्गल की रचना है, क्योंकि वहाँ के कोई ऐसे बाष्पीकृत हो गए ना, उसमें से लाइट जो गिरता है उसका उस, परंतु उसको देखकर ऐसे आ गए कि राजा के लिए बुरा है, ऐसा कुछ आता है उसमें। अभी उसमें भी बहुत कुछ विशेषताएं होगी ना, खाली हमने ऐसा देखा हुआ ऐसा नहीं। सब उनको पता चलता है। हाँ हाँ, ये जो यहाँ तो 12 वर्ष का दुकाल पड़ेगा वो भी बताया था ना, और वो सारे साउथ में चले गए थे, और उसके बाद श्वेतांबर मत शिथिलाचार हुआ था। यानी आने वाले वो सारे आगाही कर सकते हैं, इसको कहते हैं निमित्त ज्ञानी। ज्योतिष शास्त्र अलग है, ज्योतिष केवल वो ग्रह तारों नक्षत्रों का वो देखकर, वो अंतरिक्ष हुआ ना, वो अंतरिक्ष ज्ञान हुआ, और बाकी जो है वो तो जैसे सपने, जैसे चंद्रगुप्त के सपने 16 सपने हैं, उसको सुनकर उसकी आगाही सब भविष्य की कर दी थी कि ऐसे ऐसे होने वाला है। वो तो बात अलग है, वो भी एक साइंस है कुछ, परंतु यानी कब जन्म हुआ, क्या हुआ, क्या उसकी बात अलग है, वो भी एक साइंस ही है जिसको, वो तो आपने ऐसे भी सुना होगा, वो नाड़ी शास्त्र नाम के कितने ग्रंथ है अभी भी साउथ में, वो भी आपके पूरे जिंदगी के घटनाएं बताते हैं उसमें। यानी वो एक टाइप का साइंस है, परंतु जीव उसके पीछे लग जाता है और उसी के अधीन जो कुछ करना है करने, वो चलो भविष्य देखो, चलो भविष्य, अरे जो होने वाला है वो निश्चित है, तो उसको क्या देख रहे तुम, जो करना है वो कर रहे हो ना। दहीगांव में क्या है, ज्योतिष के ऊपर ग्रंथ है। अच्छा हाँ। महेंग भाई कहते हैं वो रास्ते पर बैठ के ज्योतिष बताए तेरे को मंगल नड़ता है, तो कहते तेरे को नड़ रहा है तो यहाँ बैठा है। देखो ये अगर होने वाला है टलेगा नहीं तो तुम क्यों उसके पीछे रो रहे हो, उसमें बोलो।
11 अंग और 14 पूर्व, अभी तो पंगत
11 पूर्व नहीं कहा, 11 अंग और
11 अंग और 14 पूर्व।
हाँ,
अभी 11 अंग का तो लोप हो गया है, अभी जो प्रयोजन भूत बात हमको 14 पूर्व देखते मिल रही है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जो हम लोग
महाकर्म प्रवृत्ति प्रावृत में से कुछ कुछ ये सभी अंगों का और पूर्वों का थोड़ा एक देश ज्ञान था ना उनके, एक देश था, बहुत सारा एक देश ज्ञान जो चला रहा था, प्रयोजन मूल बातें तो वो तो चली ना, बहुत विस्तार के बाद तो छूट गई है समझो। बिल्कुल किसको, ये जो है ना उनके तो तप के प्रभाव से आ जाते हैं, ऐसे बाहर देख देख के सिखा सिखा के ऐसा नहीं आता है। हाँ वही तो पूछ रहे, वही पूछ रहे, वो तो को अवधि ज्ञान था उसका, विभंग ज्ञान था वो विभंग ज्ञान था नष्ट।
हाँ
उसके अंग अपने से ही आता है, ये जो निमित्त ज्ञान उसके उसके भी रचना तो होगी ना शास्त्र में, तो इस निमित्त से ऐसा है, परंतु उसका भी अभ्यास होता है, परंतु मूल में ये ज्ञान का विकास अंदर से ही हो जाता है, और तब के कारण ये ऐसे ऐसे निमित्त ज्ञानी वगैरह होते। अभी उनको कौन सिखाने जाता है। हाँ हाँ, वो तो शुद्ध ज्ञान में डायरेक्ट लगाते हैं, परंतु ये जो निमित्त शास्त्र जो है, मुझे तो मालूम है वो आचार्य शांति सागर जी थे, और बिल्कुल ऐसा कुछ यानी सीधा एटमोस्फियर था, फिर भी कहा थे नहीं यहाँ नहीं मुकाम करना, या जो कहते ऊपर जाना है। हाँ तो फिर ऊपर कोई पहाड़ी जैसी था, वहाँ जाके वो रुके, और बहुत बड़ा बाढ़ वगैरह आई थी, सिक्स टेन उनको तो था ही ऐसे, उनका ज्ञान का कुछ था विशेषता ही थी।
तो बातें जो 11 हमने जो बताई विस्तार पूर्वक,
हाँ।
ये ज्योतिष शास्त्र और
ऑन किया क्या,
हाँ। ज्योतिष शास्त्र वो सब बात हम देख रहे थे कि वो शास्त्र में आती है, तो वो प्रयोजन भूत है कि अप्रयोजन भूत।
आप बोलो
अभी जो पंग में अरे
तो वो क्या अप्रयोजन भूत बातें बताते हो गए, वो तो एक साइंस है, जो एक ज्ञान का ज्ञेय है, वो ज्ञान के विशेषताएं हैं, ज्ञान क्या नहीं जानता, अभी केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ जाता है इनके सब कुछ। जीव क्यों उसकी इतनी सारी बातें आई है आत्मा की और हमें उसी के प्रश्न उसी की महत्ता क्यों पड़ती है, क्योंकि हमने अपने को शरीर मान के रखा है और हमको कौन से संयोग आने वाले हैं उस पर बहुत ध्यान है हमारा। हाँ कुछ ये संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारे सब बहू बच्चे रहेंगे कि नहीं अच्छे रहेंगे, ये क्यों प्रश्न आ रहा है, मेरी लाइफ कितनी बाकी है, होता है कि नहीं ऐसा। अरे आत्मा की बात है, पूरा केवल ज्ञान उत्पन्न, अभी केवल ज्ञान की महत्ता नहीं आ रही है। एक ज्ञान तो ज्ञान है ना किसी भी बारे में हो, परंतु जो जानने वाला है उसको कैसे जानना, ये तो पूरा प्रयोजन भूत है। तो ये प्रयोजन भूत है कि नहीं, वो प्रयोजन, इसी में हम उलझे हुए हैं। मूल बात पकड़ लो कि मुझे मेरे को कैसे जानना है, ये जानने, ये सभी बातें हो रही है, वो ज्ञान के ही भेद है ना सब। कहां से हो, बाहर से थोड़ी वो आता है, बाहर से तो कुछ नहीं होता है। अभी प्रवचन सार में तो यही बात चल रही है ना, वही तो है, क्योंकि जब तक पकड़ नहीं आता तब तक ये कंफ्यूजन चलेगा कि नहीं चलेगा। मनीषा बेन क्या पूछ रही थी, वो राग कैसे पकड़ में आता है, ज्ञान नहीं पकड़ में आता है, क्योंकि अपने को राग रूपी मान, अरे पर उसको पकड़ने वाला कौन है तो नक्की करो ना, ये बुद्धि तो लगाओ लो, पकड़ में आता ये कह रहे, पकड़ में आ रहा है कह रहे, और फिर कहते ज्ञान नहीं पकड़ में आ रहे है।
हाँ
ये तो बात सही है, क्योंकि जब तक ऐसा लगता है ना कि कहीं तो अटक गए, कहीं तो कुछ हो रहा है, कहीं नहीं पकड़ में आया, नहीं पकड़ में आया, परंतु शांति से उस पर सोचो आप, और खाली विकल्प उठाने की बात नहीं, वो तो प्रवचन सार में सब पूरा रास्ता उसमें आ रहा है, यानी पूरा मार्ग। हाँ देखो आगे हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 13 पर बढ़ रहे हैं। ये जो अष्टांग यानी आठ प्रकार के बताए ना महानिमित्तों से जो ज्ञान होते हैं, वो एक विद्या है, उसकी विशेषार्थ पढ़ते हैं। देखो अंतरिक्ष भौम अंग स्वर व्यंजन लक्षण चिन्ह और स्वप्न, ये आठ महानिमित्त कहे जाते हैं। अंतरिक्ष ज्ञान किसको कहेंगे, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ताराओं के उदय अस्त आदि से भूत भविष्य संबंधी फल का ज्ञान करना अंतरिक्ष ज्ञान है। पृथ्वी के घन सुशीर रुक्षतादि के ज्ञान से, यानी वो तो जमीन की ओर देखकर कितनी रूखी है क्या है उसको देखकर वो सारा जो निमित्त से ज्ञान होता है ज्ञान से, अथवा पूर्वादि दिशाओं में सूत्र निवास करने से वृद्धि हानि जय पराजय आदि का ज्ञान करना, तथा भूमि में छिपे हुए स्वर्ण चांदी आदि का परिज्ञान करना भौम ज्ञान है। यानी पृथ्वी को देखकर या वो विशिष्ट बातें ख्याल में आ जाती है। हाँ ये जैसे यानी यहाँ कुआं खोदेंगे तो मिलेगा कि नहीं पानी, वो तो ऑर्डिनरी भी किसी को ऐसा उस संबंधी ज्ञान होता है। हाँ गांव में होते हैं, वो कहते पायाड़ू नहीं समझे, ब्रिज डिलीवरी वाले होते हैं ना नहीं समझे, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, हेड से होती है, पहले हेड आता है नीचे, ब्रिज डिलीवरी का अर्थ क्या है, वो पैर पहले आ जाते हैं, ऐसे पायाड़ू कहते उसको। और ऐसे लोगों को कुछ हो तो कहाँ कुआं खोदना क्या उसके नॉलेज, ऐसे किसी किसी ये गांव में ये बातें बहुत चलती रहती है। हाँ क्योंकि वो तो वो विद्या है ना, उसके ज्ञान की विशेषता है उसकी, उसके लिए समय दृष्टि होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसे भी हम अन्य भी देखे हमने, कोई ये जो नॉस्टरडैम वगैरह हुआ ना, वो तो को अवधि ज्ञान था, उसको तो अवधि ज्ञान था, को अवधि ज्ञान कहेंगे हम इसको, यानी वो भविष्य की कुछ आगाही कर सकता है। जिसको ये इसकी बात मालूम नहीं है अवधि नाम का कोई ज्ञान होता है, उसके तो इधर चमत्कार है इतना है, फिर आगे पीछे साधु का कुछ ऐसा पहन लिया ओढ़ लिया और फिर लोग उसको त्रिकाल ज्ञानी सर्वज्ञ क्या क्या समझने लगते हैं, और वो भी सब नाटक करते रहते हैं। ये भौम ज्ञान हुआ। देखो आगे 13 नंबर पेज चल रहा है अपना, अंग उपांगों के देखने आदि से, अंग ने मुख्य जो हाथ है पैर है मस्तक है वो अंग है, उपांग ने उंगलियां है और छोटे अन्य भी जो छोटे छोटे अवयव है, तो उसको देखने से त्रिकालवर्ती सुख दिखादि को जान लेना अंग ज्ञान है। त्रिकालवर्ती कहने से वो अनंत काल की बात नहीं, भी आगे पीछे का कुछ, यानी भूत भविष्य वर्तमान का कुछ जान लेना। अक्षरात्मक या अनक्षरात्मक शुभ अशुभ शब्द को सुनकर इष्ट अनिष्ट फल को जान लेना स्वर ज्ञान है। यानी कोई ऐसी ध्वनि सुनकर, या हो सकता है कि पक्षियों की हो, कुछ बच्चे की हो, ये तो आता है ना कि भद्रबाहु जब थे तो वो झूले में झूलते हुए बालक ने कुछ बोला और उससे उन्होंने, वो तो दुकाल आने वाले, उसकी घोषणा कर दी थी। मस्तक ग्रीवा आदि में, ग्रीवा ने डोक डोक, गुजराती में डोक कहते हैं, नेक नेक। अभी कहीं पर समझे ना, कहीं शरीर पर कहीं पर भी तिल मशक आदि चिन्हों को देखकर, यानी वो कोई ऐसे दाग होते हैं या कोई तिल होते हैं, अन्य कुछ, या कोई उसमें भी बहुत सारे ना, जिसको शंख है, मत्स्य है, ऐसे उसी कोई आकारों को बताया जाता है, रेखाएं जो होती है, तो कहते हैं कि चिन्हों को देखकर त्रिकाल संबंधी हित हित का जानना व्यंजन ज्ञान है। श्री वृक्ष स्वस्तिक भृंगार कलश आदि लक्षणों को देखकर त्रिकालवर्ती स्थान मान ऐश्वर्य आदि का विशेष ज्ञान करना लक्षण नामक निमित्त ज्ञान है। वो भी हमने, हम उंगलियों पर देखे करते थे कितने शंख है और कितने चक्र है, मालूम है कि नहीं? ये है ना, यहाँ जो रेखाओं के आकार होते हैं, एकदम कौन से अंतिम पैरों पर, उंगलियों के अंतिम पैरों पर आप देख लेना, यानी सेंटर से राउंड से शुरू होता है ना, उसको चक्र कहेंगे। सभी राउंड नहीं होता है, देखो वो, आप अगर वो गौर से देखेंगे तो ऐसे 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 हो गए वो शंख होते हैं, और कोई तो ऐसे होते हैं, ये ऐसी रेखाएं होती है। हाँ तो हम देखते हैं ये कितने उंगलियों पर शंख है, कितने, बचपन में ये हमारा शौक था बहुत सारा ऐसा। अभी जो कुछ कुछ अच्छा को समझते हैं, इवन यानी जो बालों की जो हो रही, आप यहाँ मस्तक पर भी देखिए, बिल्कुल छोटे जो बाल जो दिखाई भी नहीं देते हैं, उसकी भी विशिष्ट रचना होती है। मैंने देखा क्योंकि मुझे मोना की याद है, बिल्कुल ऐसे बालों का चक्र जैसा है उसका, ऐसा ऐसा नहीं, बिल्कुल गौर से देखेंगे तो ख्याल में आता है। हाँ ये नहीं, अच्छा पीछे के बालों का तो सुना होगा, जब एक चोटी होती है या भवरा होता है, ये इतना सुना है कि नहीं? हाँ, जिसके माथे में भवरा है उसके, वो अपत्य के बाद लड़का होता है, और जिसके से चोटी जैसी नीचे तक, ये हेयरलाइन है ना नीचे तक, उसके पीछे लड़की होती है, यानी उसको बहन होगी उसके बाद। और ये मैंने देखा है, बहुत सैकड़ों में देखा है, वो सच होता है। तो ये आप बाद में आने वाला तो निश्चित है ना, उसके पीछे भाई होगा कि बहन होगी निश्चित है, यानी किसी माँ को एक बच्चा हुआ है तो सेकंड उसके बाद क्या होने वाला है वो तो उसको देख कर पता चलता है।
वो
नहीं होती है ना, उसके बाद क्या होने वाला है, यानी पहला लड़का हुआ और उसको वो छोटी वाला है पीछे, तो उसके बाद लड़की होने वाली
है।
अरे ये तो ऑब्जर्वेशन है और उसमें कुछ होता है उसमें। हाँ ये ऐसे ही चलते ना, ये ऑब्जर्वेशन, ये जो कुछ जो होने वाली बातें इस तरह से, अभी महानिमित्त नहीं, बस थोड़े थोड़े तो होते हैं ना ऐसे। लॉजिक जो कुछ होना है पता नहीं है। मेरे बात की बहन है, उसके दो भौरे थे, उसके बाद दो भाई हुए।
चार के पांच छह।
आपके भी वो छोटी जैसा है, वो पीछे शोभा हुई ना। चलो चलो हाँ देखो पेज नंबर 13 पर चल रही बात लक्षण की बात हो गई ना। श्री वृक्ष स्वस्तिक भृंगार कलश, यानी वो जो हाथ में वगैरह रेखाएं होती है ना, तो रेखाओं से अलग अलग आकार होते हैं, उसके अलग अलग नाम भी होते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, लक्षण की बात हो गई। वस्त्र, शस्त्र, छत्र, जूता, आसन, शयनादिकों में देव, मानुष, राक्षस आदि विभागों से शस्त्र, कंटक, चूहा आदिकृत छेदन को देखकर त्रिकाल संबंधी हानि, लाभ, सुख दुखादि को सूचित करना छिन्न नामक ज्ञान है। छिन्न यानी कोई छेद हुआ, कपड़ा फटा, कपड़ा हो सकता है खिले में अटक कर फट गया, हो सकता है चूहे ने उसको काट लिया, तो वो देखकर वो कुछ निमित्त का ज्ञान हो जाता है उनको। स्वामी जी की बात है, जब दीक्षा के लिए हाथी पर चढ़ रहे थे तो वो धोती उसमें वो सीढ़ी पर अटक कर खिले में अटक गई थी फट, तभी उनके मन में विचार आया था शायद ये वस्त्र वाला मुनिपना नहीं हो सकता, ये बात आती है ना उनके उसमें, सुनी है ना आपने। ये छिन्न नाम देखो ना कितने कितने जे जे। हम तो वो फट गया चल, पर उसमें से कुछ
तभी उनको क्या समय ज्ञान थे वो
नहीं,
नहीं तो लेते ही नहीं ना
समय के, उनको विचार आया या बाद में उनको सोचा होगा, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा हुआ था और उसका ये हो सकता है अर्थ। वात पित्त कफ दोषों के उदय से छिन्न की बात नीचे लिखी है, देखो नीचे बताए 3 नंबर का पॉइंट है फुटनोट में, देव, दानव, राक्षस, मनुष्य और तिर्यंचों के द्वारा छेदे गए शास्त्र एवं वस्त्रादिक तथा भवन, नगर आदि और देशादि चिन्हों को देखकर, यानी जो कोई मान लेते ना बिल्डिंग गिर गई या कुछ अन्य कुछ बातें हो गई है, तो उसको देखकर त्रिकाल भावी शुभ शुभ मरण विविध प्रकार के द्रव्य और सुख दुख को जानना यह चिन्ह निमित्त ज्ञान है। यहाँ चिन्ह का नाम चिन्ह दिया गया है, ये त्रिलोक पन्नति में उसको चिन्ह लिखा था, यहाँ छिन्न लिखा है। आगे देखते हैं, वात पित्त कफ दोषों के उदय से रहित, ये तो आयुर्वेद में वो जो उनका जो बैलेंस बिगड़ जाता है तो कोई रोग आदि होते हैं, तो कहते ऐसे कोई रोग यानी वो त्रिदोष से रहित व्यक्ति के रात्रि के पिछले भाग में चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, समुद्र आदि का अपने मुख में प्रवेश करना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उपगुहन आदि शुभ स्वप्न तथा घृत या तैल लिप्त अपना शरीर देखना, गर्दभ ऊंट पर चढ़े हुए इधर उधर भटकते फिरना आदि अशुभ स्वप्न के दर्शन से आगामी जीवन मरण सुख दुखादि का ज्ञान करना स्वप्न ज्ञान है। ये दोष के कारण सपने हो सकते हैं, अपचन हुआ, जो कुछ हुआ इसी वक्त, ऐसा नहीं कहते, नॉर्मल है और उसके सपनों के आधार से उसकी आगाही कुछ बता देना, ये उसका एक साइंस है। मुझे याद है हमारे घर के शास्त्र भंडार में एक पुस्तक थी, उसमें सपनों के फल लिखे हुए थे। ऐसी भी एक पुस्तक थी कि ऐसे चौकोनी उपासा रहते हैं ना, ऐसे हम डालते हैं तो उसके चहुर एक एक कुछ अक्षर वगैरह रहता था, वो 3 बार डालना, तो जैसे ना त त त आया, त त प आया, त त म आया, ऐसा कोई 3 का कॉम्बिनेशन होता था, फिर वो पूरी पुस्तक में उसके कॉम्बिनेशन का उसका अर्थ बताते थे। तो रोज मैं तो दर्शन करने के बाद थोड़ा पढ़ लेती थी, फिर वो हमारी एक आदत थी, वो डालो और फिर अपना देख लो क्या है उस दिन। मगर ऐसी ऐसी पुस्तकें अवेलेबल हमारे घर में थी, वैसे अभी मुझे पता नहीं अभी रखी है कहीं चली गई कहाँ, नहीं वो हमारे घर की थी। काका के घर का भंडार बहुत पहले का था। नहीं पता नहीं कांति भी नहीं लिए। हाँ देखो देखो लॉजिक में नहीं, मन में जो है वही चलता रहता है, ऐसे भी होता है। यहाँ कहा ना वो तो ये तो अर्ली मॉर्निंग में जो सपने होते हैं, और वो भी ये तीन दोषों से रहित वाले की बात है। अभी हर सपने का अर्थ हमको तो पता नहीं होता है, ऐसे भी होता ना, हम तो जो दिन भर सोचते हैं वही मन में, तो मन तो एक्टिव है वहां पर, और उसको कोई आगा पीछा कुछ ना कुछ भी सोच लेता है, और उसको कोई जिसको नो हेड एंड टेल ऐसे कुछ भी बातें चलती रहती है। इन महानिमित्तों में जो कुशलता है वह अष्टांग महानिमित्तता है। देखो ऐसे साइंस है, परंतु ये उसके पीछे पागल होने की जरूरत नहीं, ये कह रहे हैं। ये रेगुलर जो हम जानने वाले हैं वो ज्ञान का एक भेद है, बस इतना लेकर कुछ हो तो उसके पीछे, अरे इसका क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है, उसका वो तो उसी में उलझा रहता है। आगे बढ़ेंगे अभी। 15 नंबर का सूत्र है, नमो व्यूवण पत्ताणम। अर्थ वैक्रिक रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो, ये मुनिराज जो है विक्रिया रिद्धि वाले उनकी बात है यहाँ पर। विशेषार्थ, विक्रिया को विषय करने वाली रिद्धि के अनेक भेद है, जैसे अणिमा महिमा यानी छोटा रूप लेना बड़ा रूप लेना, लघिमा यानी हल्का, गरिमा यानी भारी, प्राप्ति प्राकाम्य, ईशित्व, ये आगे चलकर बताए सबका एक एक का अर्थ, पहले इसके नाम पढ़ लेते हैं, वशित्व, अप्रतिघात, अंतर्धान, कामरूपित्व आदि। इसमें कितने ही तो देवों के भी होते हैं ना, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व, यहाँ तक तो होते ही होते, एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक आठ, आठवीं होती है उनके। शरीर को अत्यंत छोटा करना अणिमा है। इस रिद्धि के प्रभाव से कमल मृणाल के छिद्र में प्रवेश करके वहां ठहरने तथा चक्रवर्ती के परिवार की विभूति को उत्पन्न करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। अपने कमल का मृणाल पत्ता नहीं, मृणाल ने बेस, मेरे ख्याल से बेस, क्योंकि वो जब त्रिलोक सार वगैरह में हमने पहले देखे थे ना, हाँ मृणाल, जैसे ये ऊपर कमल है ना, ये उसके ये फैला है, उसको मृणाल कहते हैं, उसका तल पर जो फैला हुआ है उसका रूप जैसा। पहले तो मैं भी समझती थी कि उसके जो केसर, उसको केसर कहते हैं ना, मृणाल इसको कहते हैं।
लीफ ही हो गया ना वो,
लीफ नहीं, जमीन के अंदर पानी के अंदर बेस पर,
एकदम जो इनको जो रूप रहता
है। हाँ अब यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे वो केसर वाली बात है ना, कमल मृणाल के छिद्र में प्रवेश करके, यानी ये तो ऐसा लगता है कि वो ऊपर जो डंडी केसर ऊपर आते हैं ना, पर यहाँ होते हैं, वहाँ लगता है यहाँ से, क्योंकि मैंने मृणाल शब्द निकाल कर देखा था वो भूगोल के प्रकरण में, तब वहाँ ऐसा तो नीचे का बेस उसको मृणाल कहते हैं। मैं भी ऐसे ही समझते, ऊपर जो फूल में से ऐसे निकलते हैं ना बाहर, फ्लावर में से जो निकलते हैं ऐसे पराग कण जिसमें होते हैं, तो कहीं पर भी हो सकता नहीं, इधर या उधर उसमें उस छिद्र में वो जाके इतना छोटा रूप धारण करे। नहीं वो तो अलग, अनिमा में क्या है,
अनिमा का अर्थ सबसे छोटा शरीर प्राप्त करना, वो कितना छोटा कि मृणाल के छिद्र में भी जाके वहाँ अवगाना लेवे।
हाँ पर उसी के साथ उन्होंने परिवार की विभूति को उत्पन्न करना ऐसा भी लिखा है,
दूसरी बात
है। दूसरी बात है, अपने शरीर को मेरु पर्वत से भी विशाल करना महिमा रिद्धि है। देखो ये मुनियों को रिद्धि के, देवों के तो उनका शरीर ही वैक्रियक है, उनके तो नेचुरली है, उनके लिए समय दृष्टि या ऐसा कुछ होने की जरूरत नहीं है। विक्रिया से तो अनेक बड़ी सेना भी तैयार कर सकते हैं, जैसे वो ऐरावत हाथी है और लाख योजन का बन के निकलता है वहां से, जम्बूद्वीप इतना बड़ा, वो क्या है, ये उनके वैकरिक शरीर की वो विशेषता है, बना सकते, पर ये तो मुनिराज तप के बल से उनके ये रिद्धियां प्राप्त होती है। तो ये महिमा रिद्धि है, शरीर को वायु से भी हल्का करना लघिमा है, शरीर को वज्र से भी अधिक भारी बनाना गरिमा है, भूमि पर स्थित रहते हुए भी अंगुली के कोने से मेरु शिखर सूर्य आदि का स्पर्शन करने की सामर्थ्य को प्राप्ति कहते हैं। यह हमने जो विक्रिया रिद्धिधारी माता ने विष्णु कुमार मुनि ने, वो बलि राजा ने जब उपसर्ग किया था तो उसने 3 हाथ जमीन मांग ली, तो एक कदम यहाँ रखा मेरे पर, तो दूसरा मनुष्योत्तर पर चल, अभी तीसरा रखने को जगह नहीं रही। हाँ, यानी उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है, उनको तो पता नहीं, वो तो तप में थे, तो किसी दूसरे मुनि के अवधि ज्ञान में आया कि इनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है, तो वहां जाके उनको विनती की उन्होंने हाथ जोड़कर, तो उन्होंने ऐसा हाथ लंबा करके देखा, तो इस तरह से वो अरविंद भाई बता रहे हैं। ये हो गया ना प्राप्ति, जल में पृथ्वी के समान चलना और भूमि पर जल के समान तैरना प्राकाम में रिद्धि है, तो पृथ्वी के अंदर से भी चले जाते हैं। 3 लोक की प्रभुता ईशित्व है, संपूर्ण जीवों को वश करने की सामर्थ्य वशित्व है, पर्वत के भीतर भी आकाश में गमनागमन के समान बिना रुकावट के आना जाना, ये है ना, पर्वत हो या जमीन हो उसके अंदर से भी जैसे हम चलते हैं ना वैसे उनका गमन, अप्रतिघात है, प्रतिघात है ना, उनको कोई अड़ा नहीं सकता है। हाँ, अदृश्य रूप होने की सामर्थ्य अंतर्धान है, वो आते हैं ना कभी कभी अंतर्धान प्राप्त, हाँ, अंतर्धान हुए नहीं, प्रकट हुए फिर वो तो वैनिश हो गए, अंतर्धान। युगपत अनेक आकार और रूप बनाने की शक्ति काम रूपित्व है। यहाँ जिन शब्द की अनुवृत्ति होने से अष्टगुण रिद्धि होते हुए भी देवों का ग्रहण नहीं किया है, क्या कहा, देवों के भी ये ऐसे 8 गुण होते हैं वैकरिक शरीर में, पर ये जिन शब्द नमो जिनानम की बात आई है इसलिए यहाँ ये रिद्धिधारक मुनिराज को ही समझना है, कारण देवों में संयम का अभाव है अतः वे जिन नहीं है। नमो विज्ञाहराणम, विद्याधारी जिनों को नमस्कार हो, जिन शब्द है ना वो मुनिराज को ही लेना उसमें। विद्या 3 प्रकार की होती है, मातृपक्ष से प्राप्त जाति विद्या है, पितृपक्ष से प्राप्त कुल विद्या है, षष्ठ अष्टम आदि उपवास करने से सिद्ध की गई तप विद्या है। यहाँ देव तथा विद्याधरों का ग्रहण नहीं किया कारण वे जिन नहीं है, क्योंकि ये विद्याएं जो जाति विद्या कुल विद्या और वो बाकी वो तप है, ये तो विद्याधर भी हासिल करते हैं, उनके भी होते हैं, इसीलिए उनका नाम विद्याधर है, और देवों के भी ऐसी बातें तो होती हैं, तो कहते उनको यहाँ नहीं लेना, क्योंकि नमो जिनानम वो सूत्र की याद रखना, नमो चारणानम, चारण रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। अभी ये चारण रिद्धिधारी है, कौन से चारण के भी वो भेद है, देखो जल ने जल चारण, जंघाचारण, तंतुचारण, पुष्पचारण, पत्रचारण, अग्निशिखा चारण वगैरह उसके भेद है। चारण रिद्धियां ने वो स्वयं ऐसे गमन करके चले जाते हैं, आदि के अवल आलंबन से गमन करना चारण रिद्धि है। कुआं बावड़ी आदि में जलकायिकों की विराधना नहीं करते, देखो जलकायिकों की भी विराध नहीं करे, जलचर नहीं कहा, जलकायिक कहा। भूमि के समान चरणों के उठाने धरने की प्रवीणता को जलचारण कहते हैं। भूमि से 4 अंगुल ऊंचे आकाश में जंघा के उठाने धरने की कुशलता से सैकड़ों योजन गमन करने की प्रवीणता जंघाचारण है। इसी प्रकार इस रिद्धि के अन्य भेद है। जैसे तंतुचारिणी ने तंतु पर, जैसे वो कौवे होता है ना, उस तंतु पर भी चले जावे फिर भी उसको हानि नहीं पहुंचे, इस तरह से ऐसे पत्रचारण फूलचारण वगैरह सब जो पुष्पचारण आती है ना बातें, इसी प्रकार इस रिद्धि के अन्य भेद है। नमो पन्न समणानम प्रज्ञाश्रमण जिनों को नमस्कार हो, प्रज्ञा ने बुद्धि और श्रमण ने मुनिराज, मुनिराज को श्रमण कहते हैं। विशेषार्थ असाधारण प्रज्ञा शक्तिधारी प्रज्ञाश्रमण कहलाते हैं, अत्यंत सूक्ष्म तत्वार्थ चिंतन के प्रभाव से 14 पूर्वों के विषय में पूछे जाने पर जो द्वादशांग चतुर्दश पूर्व को बिना पढ़े हुए भी उत्कृष्ट श्रुतावरण यानी श्रुत ज्ञानावरण का उत्कृष्ट क्षोभषम और वीर्यांतराय के क्षोभषम से, हमेशा जहां जहां ज्ञान का क्षोभषम होता है ज्ञानावरण का, वहां वहां उसके साथ वीर्यांतराय का भी क्षोभषम पाया जाता है। इसलिए कहते उत्कृष्ट श्रुतावरण व वीर्यांतराय के क्षोभषम से उत्पन्न असाधारण प्रज्ञा शक्ति के लाभ से स्पष्ट निरूपण करते हैं, यानी उन्होंने वो आगम का अभ्यास नहीं किया है परंतु बुद्धि ऐसी प्रकट हुई कि स्पष्ट उसका निरूपण कर सकते हैं, वे प्रज्ञा श्रमणधारी है। ये जरूरी नहीं कि वो बाहर पढ़ के ये हुआ, ये ज्ञान अपने से प्रकट होता है, कोई सिखावे और फिर उसका अर्थ मालूम हो वो बात अलग है, बिना पढ़ाए उसका अर्थ अंदर से प्रतीत हो जाता है। तिलोय पन्नति में प्रज्ञा के चार भेद कहे हैं, उत्पत्ति की, पारिणामी की, वैनयी की तथा कर्मजा। भवांतर में कृत, भवांतर ने पूर्व भव में श्रुत के विनय से उत्पन्न होने वाली उत्पत्ति की, उसका उत्पत्ति की कहा, मैंने पूर्व भव में उसने श्रुत की विनय की है। निज निज जाति विशेष में उत्पन्न हुई पारिणामी की, निज निज जाति विशेष यानी जैसे उस जाति में मनुष्यों में वैसी वो प्रज्ञा पाई जाती है, तिर्यंचों में पंखियों को कौन सिखाने गया है, अभी हम कहते ना वो इतना स्थलांतर करते हैं 5,000 माइल दूर से आते हैं रशिया से और वहां या भारत में आ जाते हैं, तो वो उनकी वैसी उस जाति विशेष की वो ऐसी प्रज्ञा होती है उनके, ऐसी बुद्धि उनके पाई जाती है, क्योंकि पशु पक्षियों में कौन सिखाता होगा उनका, कितने तो ऐसे भी होते हैं ना कि अंडे डाल के चले जाते हैं, कछुए है या ऐसे कुछ है, तो उनकी जो उत्पत्ति थी उनको कौन सिखाता है कहाँ जाना है क्या है, वो तो नेचुरली उनकी ऐसी बुद्धि होती है। उसको कहा पारिणामी की, द्वादशांग श्रुत की विनय से उत्पन्न वैनी की एवं उपदेश के बिना तप विशेष के लाभ से उत्पन्न कर्मजा कहलाती है। यहाँ अभी 15 नंबर के पेज पर आ गए हम, जिन शब्द की अनुवृत्ति रहने से असंयतों का निराकरण हो जाता है, यानी किसी को असंयतों को विशेष ज्ञान है तो उनको यहाँ नहीं लिया है। नमो आकाशगामिनम आकाशगामी जिनों को नमस्कार हो, विशेषार्थ पल्यंकासन, पल्यंकासन या पद्मासन नीचे बैठकर वा कायोत्सर्ग आसन से, कायोत्सर्ग ने खड़े होना, पैरों को बिना उठाए धरे आकाश में गमन करने की विशेषता को आकाश गमन रिद्धि कहते हैं, यानी इस तरह से खड़े होकर इस तरह से, अब बैठ के भी ऐसे ही चले जाते तो उसको आकाश गमन रिद्धि कहते हैं, आकाशगामी ने भी कहते ना उसको आकाश गमन रिद्धि। अब यह मुनियों की बात है, आकाशगामी ने तो अन्य भी असंयतों को भी हो सकती है, हमने वो किसकी अंजन चोर की किसकी देखी थी, वो कथा आती है ना स्मशान में जाके ध्यान किया अंजन चोर की, हाँ हाँ, यानी वो विद्याधरों के भी ये विद्याएं होती है, पर ये रुद्धि की बात चल रही, क्योंकि जिनानम शब्द आया ना यहाँ पर, यहाँ जिन शब्द की अनुवृत्ति रहने के कारण देव विद्याधरों का निराकरण हो जाता है, यानी देवों के भी वो आकाशगामिनी है, विद्याधरों के भी पाए जाती है। अभी हमने वो हरिवंश पुराण पढ़ा था, उसमें वो विद्याधरों की बातें है ना, कितनी फास्ट वो पैरों की भी प्रदक्षिणा कर लेते, क्या क्या उसमें बात आई थी वो विद्याधरों की बात, कहीं पर भी हरिवंश पुराण में बहुत बातें आई थी विद्याधरियों या उनकी जो विद्याधरों की कन्याएं या कुछ है, तो कहीं पर भी उनका गमनागमन ये वो होते हैं, मनुष्य लोक में कहीं पर भी जाना ना होता रहता है। उनकी बात यहां नहीं लेना, यहां जिनानम शब्द की बात चलेगी हरेक के साथ। 20 नंबर का सूत्र, नमो आशी विषाणम, अर्थ आशी विष रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। उग्र विषयुक्त आहार भी जिनके मुख में जाकर निर्विष हो जाता है, वा जिनके मुख से निकले हुए वचनों के श्रवण से महाविषयुक्त व्यक्ति निर्विष हो जाता है, वे आस्या विष रिद्धिधारी है। महान तपोबल से विभूषित यतिजन जिसको कहे तू मर जा, वह तक्षण ही महाविषयुक्त हो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह आस्य विष रिद्धि है। ऊपर आस्या विष कहा और ये आस्य विष कहा है ना, इस प्रकार अगर कहे तो मर जाए, ऐसी उनकी शक्ति है। इस प्रकार आस्य अविष और आस्य विष बताए ना, ऊपर आस्या विष और आस्य विष, यानी उनकी दोनों ही प्रकार की सामर्थ्य है, निर्विष होने की और वो विष होकर महाविषमय होकर मर जाने की, दोनों प्रकार के अर्थ कहे गए। क्योंकि यहाँ जब हम जिनानम जिनानम कह रहे तो ऐसा उसका दूसरे को मारने वाले तो नहीं रहेंगे, है ना, अहिंसा महाव्रत के धारी है, उनके तो मन में ऐसे विकल्प भी नहीं आएंगे किसी। नमो दिट्ठी विषाणम, 21 नंबर का सूत्र हुआ, नीचे उसके कहाँ आए हैं वो सब उसके रेफरेंस दिए हैं। दृष्टि विषय रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो, विशेषार्थ जिनके देखने मात्र से अत्यंत तीव्र विष से दूषित भी प्राणी विष रहित हो जाता है, वे दृष्टि विषय रिद्धिधारी है। उग्र तपस्वी मुनिजन क्रुद्ध हो जिसे देख ले, वह उसी समय उग्र विषयुक्त हो मर जाता है, इसे भी दृष्टि विषद वृद्धि कहते हैं। दोनों ओर से यहाँ भी जिन शब्द की अनुवृत्ति है, अन्यथा दृष्टि विषय सर्पों को भी प्रणाम का प्रसंग आता है, ऐसे कोई सर्प भी होते हैं दृष्टि विषय वाले। यद्यपि साधुजन तोष अथवा रोष से मुक्त है, यानी बहुत संतुष्ट हो गए और किसी से रुष्ट हो गए ऐसा तो रहता नहीं है, फिर भी तपस्या के कारण उनमें उपर्युक्त विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसका उपयोग वीतराग ऋषिगण नहीं करते। अश्विन भाई के प्रश्न का उत्तर आ गया, देखो इनकी इतनी शक्ति ऐसी उत्पन्न हुई उसका कोई यूटिलाइजेशन तो करेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर करे तो मिथ्या दृष्टि हो जावे, क्योंकि मुनि योग्य वो विकल्प ही नहीं है। नमो उग्रतवाणम, उग्र तप वाले जिनों को नमस्कार हो, विशेषार्थ 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन व पक्ष मासाधिक के, यानी 15 दिन का या महीने का 2 महीने का अनशन योगों में उपवास जिसको कहेंगे, किसी भी रूप के उपवास को प्रारंभ करके मरण पर्यंत भी उस योग से विचलित नहीं होना उग्र तप रिद्धि है। अब आते 16 नंबर के पेज पर, नमो दीप्त तवाणम, दीप्त तप वाले जिनों को नमस्कार हो। हाँ वो तो उपवास के, वो तो अलग अलग व्रतों के भेद थे एक्चुअली। हाँ वही उसमें तप की बात है। तो दीप्त तप वाले जिनों को नमस्कार हो। विशेषतः महान उपवास करने पर भी जिनकी मन वचन काय की शक्ति बढ़ती हुई पाई जाती है, जो दुर्गंध रहित मुख वाले, कमल उत्पलादि की सुगंध के समान श्वास वाले तथा शरीर की महाकांति से उत्पन्न होते हैं, वे दीप्त तपस्वी जिन हैं। हमें तो लगता है खाने पीने से ही तेज आता है ना, उसी लिए क्या क्या नहीं खाते, क्या क्या खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट। अच्छा, नमो तत्त तवाणम, तप्त तप वाले जिनों को नमस्कार हो। तप्त लोहे की कढ़ाई में पतित जलकण के समान शीघ्र ही जिनका अल्प आहार शुष्क हो जाता है, उसका मल रुधिरादि रूप में परिणमन नहीं होता, वे तप्त तपस्वी है। यानी वो सूख ही जाता है, न खून बनता है न उसका मल बनता है। नमो महातवाणम, महातपधारी जिनों को नमस्कार हो। देखो ये जब ऐसा पढ़ते हैं ना, तो इसी उपवास को ही तप मान लेते हैं, पर उसकी जो अंतरंग में जो अधिक आत्मस्थिरता है, उसके मुख्यता से बाह्य तपों के आधार से इनको ये ऐसी ऐसी बातें होती हैं, एंड उनको ऐसी रिद्धियां सहज प्राप्त हो जाती है। जरा उसमें पढ़ो।
तवाणम के लिए जो इससे साथ बताए ना,
हाँ,
तो समझ नहीं आया
क्यों नहीं आया।
लोहे की कढ़ाई में पतित जल के समान,
हाँ, आपने कभी देखा होगा तवा रखा है और उसपे थोड़े पानी के छींटे डालो, फटफट करके वो तो जल के सूख जाते हैं, उसमें इवेपोरेट हो जाते हैं। ऐसे कोई भी उन्होंने, वैसे भी आहार तो अल्प ही लेते हैं, तो आहार हम आहार खाते तो क्या होता है उसका, तो रिधिर में उसमें कुछ एब्सॉर्ब होगा और बाकी सारा विष्ठा रूप से निकल जाएगा, जिसको मल कहते हैं। तो उनके तो वो तो आहार ही शुष्क हो जाता है, और ना उसका मल बनता है ना रिधिर बनता है। ऐसे भी हम देखते हैं ना कि मलमूत्र नहीं होते, कौन के, वो तो महापुरुष जो होते तीर्थंकर आदि, उनके शलाका पुरुषों के, तो उनमें भी उसके मल रूप परिणमन नहीं होता है। अभी आगे देखते हैं, ये महातप की बात पढ़े रहे। महातपधारी जिनों को नमस्कार हो। सिंह निष्क्रीडितादि महान उपवास आदि के अनुष्ठान में परायण महातपस्वी कहलाते हैं। ये अलग अलग, ये जो उपवास और उसके जो कुछ उसकी बातें हमने पढ़ी थी, जो सिंह निष्क्रीडित में हमने देखा था ना, बढ़ते हुए उपवास होते हैं, पहले एक उपवास, फिर पारना, दो उपवास पारना, तीन उपवास पारना, ऐसे कितने ही तक चले जाते हैं, फिर उसका रिड्यूस होते होते इस तरह से, हाँ, वहाँ उल्टा आना, फिर मान लेते ना 25 तक बढ़े, फिर वहां से नीचे आना जाना इस तरह से। वो कौन सी आर्यिका थी ना, कुंथल गिरी पर उन्होंने सिंह निष्क्रीडित व्रत करते करते उनके ये हो गए थे, विश्व कुंथलगिरी में थी वो, क्या नाम था उनका, सर्वज्ञ श्री ने, ये अपने नीरा की ही थे कोई, उन्हीं ने। नमो घोर तवाणम, घोर तपधारी जिनों को नमस्कार हो। हो गया ना, हाँ, 26 नंबर का घोर तवाणम। विशेषार्थ, वात पित्त कफ की विषमता से उत्पन्न ज्वर, खांसी, श्वास, नेत्र पीड़ा, कुष्ठ, प्रमेहादि रोगों से पीड़ित शरीर युक्त होते हुए भी जो अनशन काय क्लेशादि तपों से अविचलित रहते हैं, तथा भयंकर श्मशान पर्वत, शिखर, गुहा, दरी, शून्य ग्राम आदि में जहाँ अत्यंत दुष्ट यक्ष, राक्षस, पिशाच, वेताल भयंकर रूप का प्रदर्शन कर रहे हैं, एवं जहाँ श्रृगाल के कठोर शब्द, श्रृगाल समझते ना, यानी वन्य प्राणी है, लांडगा होना चाहिए, श्रृगाल कोल्हे को कहते हैं, परंतु कोल्हा तो ऑर्डिनरी है, लांडगा जिसको उल्फ, कठोर शब्द, सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि के भीषण शब्द हो रहे हैं, ऐसे भयंकर प्रदेशों में सहर्ष रहते हैं, वे घोर तपस्वी है। नमो घोर परक कमाणम, घोर पराक्रम वाले जिनों को नमस्कार हो। ये पराक्रम मैंने वो युद्ध में जाके पराक्रम की बात नहीं है, ये जिनानम शब्द लगाया है ना, विशेषात पूर्वोक्ति पूर्वोक्त तपस्वी ऊपर बताए हुए अलग अलग, जब ग्रहण किए गए तप की साधना में वृद्धि करते हैं तब वे घोर पराक्रमी कहलाते हैं। तिलोय पंडित्य में कहा है, जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिजन अपने अनुपम सामर्थ्य से कंटक, शिला, अग्नि, पर्वत, धूम्र और उल्का आदि के पात करने में तथा सागर के समस्त जल का शोषण करने में समर्थ होते हैं, वह घोर पराक्रम रिद्धि है। ये उनकी सामर्थ्य बताने, वो कर रहे ऐसी बातें नहीं यहाँ पर। अब हम यही रुकेंगे, 17 नंबर के पृष्ठ पर आए, हम कल यहाँ से पढ़ेंगे। चावाणी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मैं thank you.